गाथा, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अभिज्ञात की लिखी कहानी फूल बागान का सपना। वह मजदूर था चटकल का, उसे सपने एकदम नहीं आते थे। अलबत्ता वह सोचता कि काश उसकी जिंदगी सपना ही होती और आंख खुलते ही वह सपना टूट जाता। वह जिस हकीकत में लौटता वह मजदूर जीवन ना होता। कठिन मशक्कत के बाद तो रोटियां जुटती हैं। चार चार बच्चे हो चुके थे जिनमें तीन तो बेटियां थीं। कैसे वह उन्हें पाल लगाएगी यह चिंता उसे अभी से सताने लगी थी। हालांकि चिंता करने के लिए भी उसके पास में वक्त सीमित था, क्योंकि काम के बाद उसके पास इतनी थकान रहती थी कि वह बाकी समय में खूब सोता। नींद से उठता तो नित्य क्रम से निपटने के बाद खा पी कर काम पर चला जाता और लौटकर आके सो जाता। कभी कभी तो उसे भ्रम होता कि वह काम करने के लिए ही जी रहा है। उसके जीवन का पूरा चक्र काम को ध्यान में रखकर ही बना है। वह खाता है, विश्राम करता है ताकि काम कर सके। उसकी सारी गतिविधियां काम की तैयारी से जुड़ी हैं। उसकी संतानें और पत्नी की जिम्मेदारियां प्रभु ने इसलिए दी हैं ताकि उसे काम करने की वजह मिले। ये ठोस वजह ना होती तो शायद वह कठिन श्रम से भरे काम से विरत हो जाता। वह दिन और दिनों से कुछ अलग सा था। मिल में असिस्टेंट मैनेजर साहब ने उसे अपने घर भेजा था मोबाइल फोन लाने, जिसको वो भूल आए थे। ड्राइवर गाड़ी लेकर उनके बच्चे को छोड़ने गया था जो दूर के स्कूल में पढ़ता था। ऑफिसर्स क्वार्टर मिल परिसर में ही था, सो उसे भेजा गया। वह बंगले नुमा क्वार्टर में पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। क्वार्टर के सामने तरह तरह के फूल। दरवाजे की घंटी बजाई तो खूबसूरत परी जैसी मेम साहब ने दरवाजा खोला। नाना करने पर भी उसे अंदर बिठाया गया। गंदी चप्पल को तो वह बाहर ही उतार आया था, किंतु अंदर खूबसूरत कालीन पर पांव रखने का उसमें साहस नहीं हो रहा था। सोफे पर आहिस्ते से बैठा, थोड़ा सा धस गया। उसे चाय पिलाई गई। इसी बीच 4 साल की एक गुड़िया सी बच्ची वहां पर्दों के बीच से झांक रही थी। वह साहब की बेटी थी। उसे अब तक पता न था कि जिंदगी इतनी सुंदर भी हो सकती है। खूबसूरत घर, सुंदर पत्नी, सलोने बच्चे। साहब के घर से लौटने के बाद वह देर तक अनमना रहा। मन में कहीं ना कहीं हसरत ने करवट ली, काश उसे भी ऐसी जिंदगी मिली होती। अगले दिन जब वह नींद से उठा तो उसे दुनिया बदली बदली सी नजर आई। उसने बरसों के बाद फिर सपना देखा था, फूलों की क्यारियों का, फूलों के बाग का। हाँ, उसने उसमें से एक खूबसूरत फूल बागान देखा था। फिर क्या था, सपनों से निकल कर फूल बागान उसके जीवन को सुगंधित करने लगा था। एक महक थी केमिकल से नहाए पाट में, जिन्हें वह चटकल में सिरपट होता था। बोझ उसे फूलों सा हल्का लगने लगता कई बार। धीरे धीरे उसने जागती आंखों से भी सपने देखने शुरू किए। उसे लगा कि जीवन बदला जा सकता है। उसने हाजिरी बाबू से लेकर दरबानों और मिल के ट्रेड यूनियन नेताओं को खास तौर पर सलामी दागनी शुरू की। उसके स्वभाव में जो रूखापन था वह दूर होने लगा था। लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। और वह दिन भी आया जब उसे भी उन लोगों में शुमार कर लिया गया जिन्हें खूब ओवरटाइम मिलते। उसकी कमाई बढ़ने लगी। जैसे जैसे कमाई बढ़ी उसने बचत पर और जोर देना शुरू किया। वह गरीबी के चक्र से बाहर आकर रहेगा उसने प्रण किया और अपने सोच को हकीकत में बदलने का उपक्रम भी शुरू कर दिया। उसने रिक्शा खरीदा और दूसरे को चलाने के लिए किराए पर दे दिया। रिक्शा वाले रोज सुबह उसे पहले रिक्शे का किराया देते, फिर दिन भर के लिए रिक्शा ले जाते। धीरे धीरे वह 8 रिक्शों का मालिक बन गया। आय तो बढ़ी लेकिन रिक्शा वालों से आए दिन बकझक भी होता और सुबह सुबह उसका मन खराब हो जाता। उसने कमाई को दूसरा रास्ता खोजना शुरू किया और वह भी आखिरकार मिल गया। उसने सारे रिक्शे बेच दिए और एक पुराना बेडफोर्ड ट्रक खरीद लिया, बंगला डाला। यह ट्रक उसी मिल में एक ठेकेदार के अधीन चलने लगा। ट्रक उसे औने पौने दाम पर इसलिए मिल गया क्योंकि उसके पेपर नहीं थे। यह ट्रक कोलकाता फूल बागान में कटैया के लिए जा रहा था, जहां ट्रक के कबाड़ खरीदे जाते हैं और उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके फिर बेचे जाते हैं। टायर अलग, चेसिस अलग, नट बोल्ट अलग। पुराने ट्रकों में ये पुर्जे लगते हैं। यह पुराने ट्रकों का कब्रगाह था, जहां बीमार ट्रक किसी तरह लड़खड़ाते अथवा किसी अन्य ट्रक से खींच कर ले जाए जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। घंटे दो घंटे में उनका अस्तित्व खो जाता। वह जिस चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था, वहीं सौदा हो रहा। पुराने खटारे बेडफोर्ड का जो दाम लगा, वह महंगू को सस्ता लगा और उसने दाम बढ़ाकर एक ट्रक खरीद लिया, ठेकेदार को किराए पर दे दिया। ठेकेदार के पास चार ऐसे ट्रक पहले ही थे जिनके पास पेपर नहीं थे। ये ट्रक मिल में पार्ट और उससे बने उत्पाद को एक स्थान से ढोकर दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में लगे थे। चूंकि ये मिल से बाहर जाते नहीं थे, ऐसे में उनके लिए नंबर प्लेट की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उसके पेपर्स की। सो हर ट्रक का नंबर अपनी इच्छा अनुसार रखा गया था, जिस नाम से उसे पुकारा जा सके। ठेकेदार के पास फूल बागान में कटैया पर गए ट्रक के पेपर सस्ते में मिल गए थे। सो जरूरत पड़ी किसी ट्रक को मिल परिसर से बाहर निकालने की, तो वह उन पेपरों के साथ में बाहर निकाल देता। मिल के बाहर उसके कोई भी ट्रक निकलता तो एक ही नंबर के साथ। इस प्रकार अब एक पेपर व वैध नंबर पर चार ट्रक मिल में पहले ही चल रहे थे। महंगू ने WB के आगे अपनी पसंद का अंक लगाया और मिल में उसका प्रवेश करा दिया। उसने रिक्शे बेच दिए थे और कंपनी से कर्ज लिया था और महाजनों से सूद पर रुपए, किंतु वह ट्रक मालिक बन गया था। ठेकेदार से जो किराया तय हुआ था, उसके आधार पर वह जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएगा और फिर बढ़ी हुई आय से उसकी जिंदगी में भी अब फूल ही फूल होंगे, हरियाली होगी। ठेकेदार ने एक माह तो ट्रक का किराया वक्त पर दिया, किंतु उसके बाद उसने अपना पैतरा दिखाना शुरू किया। किराया देने में उसका टाल मटोल का रवैया उसके लिए नागवार गुजरता, किंतु महंगू के पास कोई अन्य विकल्प ना था। महाजन जब घर पर आधमकते तो वह ठेकेदार क्या चिरौरी करने पहुंचता और अपने प्राप्य किराए का मामूली सा हिस्सा लेकर लौटता और किसी प्रकार साहूकारों से पिंड छुड़ाता। अब उसे सपने आने बंद हो गए थे। काम में मन नहीं लगता था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, स्वभाव में फिर से रूखापन आ गया था, बात बात में झल्लाता, वह इधर दारू भी पीने लगा था। अब वह मिलनसार नहीं रह गया था। उसके व्यवहार में आए परिवर्तन के बाद उसे ओवरटाइम मिलना भी बंद हो गया। मिल में लिए कर्ज की वसूली के लिए उसके वेतन का एक बड़ा हिस्सा पगार से कट जाता था। काम पर ना जाने की इच्छा व अस्वस्थता के कारण उसके नागे बढ़ते गए, सो वेतन और सिमटता गया। वह साहूकारों को जितना पैसा हर माह लौटाता उससे अधिक ले लेता। इस प्रकार वह कर्ज के दलदल में फंसता चला गया। ठेकेदार के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। मूल कारण वही था महंगू के दुखों का। उसने ठेकेदार के चंगुल से निकलने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह किसी पुराने ट्रक का पेपर खरीद लेगा और अपना ट्रक जल्द मिल से निकालकर CESC में चलने के लिए दे देगा, जहां पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और इस प्रकार वह कर्ज मुक्त हो जाएगा। और फिर ठेकेदार से पैसा वसूलने के लिए वह थाने तक जाएगा। यह बात उसके मन में थी जो नशे की झोंक में उसके मुंह से निकल गई। उसने रात ठेकेदार के घर जाकर उसे खुली चेतावनी दे डाली कि उसके पैसे लौटा दे, वरना थाना कचहरी सब होगा। अगले दिन जब वह मिल में पहुंचा तो उसे पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आई। 6 आदमी बड़े हथौड़ों के साथ उसके ट्रक पर वार कर रहे थे और ट्रक के विच्छिन्न हिस्से एक अन्य ट्रक में लादे जा रहे थे। वहां फूल बागान का वही ट्रक दलाल बैठा था ठेकेदार के साथ, जिसने उसके ट्रक का पहले सौदा किया था। उसे समझते देर न लगी कि क्या हो रहा है। वह वहां से भागते हुए सीधे थाने पहुंचा, जहां उसने ठेकेदार के खिलाफ रपट दर्ज कराई कि उसके ट्रक को क्षति पहुंचाई जा रही है, उस ट्रक को जो जूट मिल में चलता है। पुलिस के साथ जब वह मिल में पहुंचा तो उसके ट्रक का नामो निशान वहां नहीं था। दलाल वहां से फूल बागान जा चुका था। पुलिस ने मिल में ट्रक ना पाकर महंगू से उसके कागजात मांगे। अब महंगू को काटो तो खून नहीं। उसने जब बताया कि बिना पेपर के ट्रक मिल में चल रहा था, तो उसे पुलिस ने अवैध कारोबार में लिप्त होने के आरोप में लॉकअप में बंद करा दिया। महंगू को फूल बागान का सपना महंगा पड़ा। अभी आप सुन रहे थे अभिज्ञात की लिखी कहानी फूल बागान का सपना। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।